ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राजवाच
नन्दः किमकरोद् ब्रह्मन्
श्रेय एवं महोदयम् जसोदा च महाभागा पपौ जस्यास्तनं हरिः। हरे कृष्ण। इन प्रसंगों में माता जसोदा के वात्सल्य के अनेक बार चर्चाएं हुई। स्वाभाविक है कि माँ जसोदा अत्यंत सौभाग्यशालिनी हैं, जिनको साक्षात अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वाराध्य श्री हरि जिनके बालक के रूप में आए और भरपूर उनको स्नेह का अवसर प्रदान किए। बड़े ही स्नेह वात्सल्य से माँ अपने पुत्र रूप में प्राप्त करके भगवान को अपने स्तन अपान कराई, इसकी अनेकों बार चर्चाएं हो चुकी हैं। उस समय जब पुतना उद्धार की कथा सुन रहे थे तो माँ के स्नेह का वर्णन अंत में हुआ कि माता जसोदा अपने लाला का मुख चूमते हुए स्तनपान करा रही थी और बार बार मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर विभोर हो जाती, चूम लेती थी। और उसी संदर्भ में वर्णन हुआ कि माँ अपने बच्चे के मुख देखने में इतना तत्पर थी, बहुत देर तक लाल प्यार कर रही थी तब तक भगवान अपने मुख में छोटा सा ब्रह्मांड का झलक दिखा दिए थोड़े देर के लिए। तो वहाँ भी माँ के स्नेह का वर्णन करते हुए स्तनपान की कथा कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। इसके बाद फिर सकट भंजन के क्रम में भी कि माँ उनको पिला करके धीरे से सुला दी सकट के नीचे। जब सकट को तोड़े भगवान अपने पैरों को उछाल करके और अपनी माँ के स्तन पीने की लालसा व्यक्त किए, वहाँ भी वर्णन हुआ। फिर तीर्णावर्त के क्रम में भी वर्णन किया गया कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम कर रही थी, बहुत स्नेह से स्तनपान करा रही थी, एकाएक भारी लगने लगा तो जमीन पर रख दी। भगवान माँ के गोद से अलग हो गए तीर्णावर्त का उद्धार करने के लिए। वहाँ भी वर्णन हुआ है कि माँ उनको उछाल उछाल कर स्नेह कर रही थी तो भगवान को और इच्छा हुई कि ज्यादा ऊपर तक चले, इसके लिए जोग माया ने तीर्णावर्त को प्रेषित किया। और फिर आगे भी कई बार वर्णन हुआ कि माँ अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री भगवान से लाड़ लड़ाती थी। अभी इस अध्याय में भी माँ के स्नेह का वर्णन हुआ कि बड़े स्नेह पूर्वक अति हीन ज्ञान से अपने बच्चे का लालन करने के लिए मैया जसोदा मिट्टी खाते हुए अपने लाला को डांट रही है और उसी क्रम में ब्रह्मांड देख ली। तो बार बार माँ के वात्सल्य का वर्णन हुआ तो स्वाभाविक महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा होती है कि नंदः किमकरोद् ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, हे सुखदेव गोस्वामी, आप तत्त्वतः ब्रह्म के सिद्धांत को जानते हैं, ब्राह्मण हैं, आप वेद शास्त्र को जानते हैं, ब्रह्म का अनेक अर्थ है, उन अर्थों में भगवान के साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान, संस्कार, सब कुछ का वर्णन होता है। तो आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नंद कौन सा ऐसा तपस्या किए थे जिसके कारण श्री हरि उनका पुत्र बने। और सबसे बड़ी बात है कि नंद बाबा से भी ज्यादा भाग्यशाली माता जसोदा है। जसोदा के लिए स्पेशल अलग से कहते हैं, जसोदा च महाभागा। जसोदा अत्यंत भाग्यशाली है जिसके कारण भगवान उनका पुत्र बने। और पपौ जस्या स्तनम हरि, जिनके स्तन का श्री भगवान ने पान किया। तो श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र हैं, सर्व आत्मा राम हैं, उनको किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ के स्तन की जरूरत है श्री भगवान को। ऐसा कौन सा तपस्या कर ली माँ जसोदा जिसके कारण भगवान अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। परम भाग्यवती जसोदा की तपस्या का वर्णन कीजिए, कौन ऐसी तपस्या की जिनसे उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता में, अन्य शास्त्रों में सब जगह कहा गया है कि सुकृतवान लोग जो अच्छा कर्म किए हैं उनको अच्छा गति प्राप्त होती है, अच्छी गति, और पुण्य कर्मों के कारण लोग भगवान का भजन करते हैं और सुखमय स्थिति को प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में कहते हैं भगवान भी जब वर्णन करने लगे कहते हैं कि मेरे भजन करने वाले कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी लोग सुकृति होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चर सब। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, अपनी लालसा पूर्ति के लिए भगवान के शरण में आवे, किसी कामनाओं की पूर्ति के लिए, या किसी दुख को मिटाने के लिए, या समझ बुझ करके किसी तरह भी आता है वो सुकृतवान। और सुकृति का अर्थ है कि वह पूर्व जीवन में कुछ पुण्य कर्म किया है, तभी उसके मन में आया किसी देवता देवी तांत्रिक फांत्रिक के पास न जाकर भगवान के पास आया। तो भगवान के पास आने का अर्थ है कि वह सुकृतिवान है। सुकृतिवान का अर्थ है उसने अपने पूर्व जीवन में या पहले कोई अच्छा कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, जिसके कारण उसकी ये अवस्था हुई कि भगवान के शरण में आया। तो उन्होंने पूर्व में किस तरह का पुण्य कर्म किया था जिसके कारण उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई, महाराज पूछ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि नंद महाराज और जसोदा को कृष्ण के माता पिता के रूप में श्री भगवान स्वीकार किए, फिर भी माता जसोदा कृष्ण के पिता नंद से अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि नंद महाराज तो कभी कभी कृष्ण से मिलते थे, कभी बाहर भी चले जाते थे काम धंधों में, लेकिन माता जसोदा क्षण भर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं होती थी। कृष्ण के शिशु काल में, बाल्यकाल से जीवा काल तक माता जसोदा को प्रचुर संगति प्राप्त हुई। जब कृष्ण बड़े हो गए तब वृंदावन जाने लगे और माता जसोदा से थोड़ा सा अलग हुए, लेकिन आते ही माँ के गोद में बैठ जाते थे। अतः माता जसोदा के भाग की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने सहज में पूछा है, जसोदा च महाभागा। तो जसोदा ऐसा कौन सी तपस्या की थी, कौन ऐसा पुण्य कर्म की थी। और एक विशेष बात आगे कहते हैं कि पितरौ नान विन्देतम कृष्णो दारार्भके हितम गायंत अद्याप कवयो यल्लोक समलापहम। कहते हैं भगवान कृष्ण की वो बाल लीलाएं जो अपने ऐश्वर्य और महता के कारण बहुत पवित्र है, बहुत महान है, आज तक विद्वान लोग उसको गाते रहते हैं। लेकिन श्री भगवान अपने ऐश्वर्य और महत्व को, भगवत्ता को छिपा करके ब्रज में बाल लीलाएं कर रहे हैं। जिन पवित्र बाल लीलाओं को आज तक कवि लोग गा रहे हैं, बहुत पहले अनादि काल से गा रहे हैं, लेकिन आज भी गाते हैं। और ऐसे गाने वाले लोगों के विषय में कहते हैं यह लोक समलाप हम, गाने वाले के सारा मल समाप्त हो जाता है, सारा दुर्गुण समाप्त हो जाता है, उनका सारा पाप ताप दोष दुख समाप्त हो जाता है। उस जस के विषय में यह लोक समलापहम, समल का अपहम पूरा पूरा समाप्त हो जाता है, कलमश दूर हो जाता है, चित्त की गंदगी दूर हो जाती है, उनके जीवन में आने वाले दुख समाप्त हो जाते हैं। यह भगवान के जस की महिमा है। तो जिनके जस को कवि लोग गाते हैं, गायंत अद्याप्य कवयो, कवयो माने विद्वान लोग, कवि लोग, जनकार लोग भगवान के जस को गाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिपनम। अंत में श्री भगवान को नमस्कार करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं उस प्रभु को, उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके जस, जिनके नाम को गाने से समस्त पाप समाप्त हो जाता है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पूरा पूरा पाप समाप्त हो जाता है, किसी भी प्रकार का पाप बचता नहीं। और प्रणामो दुख समन, पर जिनको प्रणाम करने से दुख समाप्त हो जाता है, तम नमामि हरिम परम, मैं उस श्री हरि को प्रणाम करता हूँ जिनके नमस्कार मात्र से दुख समाप्त होता है। तो ऐसे श्री हरि जिनका जस विद्वान लोग, जानकार लोग गाते हैं, जो इस रहस्य को जानता है वो निश्चित गाएगा, पाप समाप्त करने के उद्देश्य भले हो, हालांकि यह उद्देश्य नगण्य है, तुच्छ है, लेकिन निश्चित रूप से उनको प्रणाम करेगा, उनका जस गाएगा। तो ऐसे श्री भगवान जिनकी बाल लीलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, अपनी महत्ता को छिपाकर बाल लीला कर रहे हैं, बहुत पवित्र है, श्रवण कीर्तन करने वाले के सारे पाप ताप को समाप्त कर देता है। बड़े बड़े कवि लोग, त्रिकालदर्शी महात्मा लोग उनके जस को गाते हैं। वे लीलाएं जो उन्होंने ब्रज में सुलभ कराया ब्रजवासियों को, नंद जसोदा को, अपने माता पिता को अवसर नहीं प्राप्त हो पाया, जिनके गर्भ से भगवान जन्म लिए, देवकी वसुदेव को लीला देखने का अवसर नहीं मिला, जन्मदात्री माँ देवकी अपना स्तन नहीं पिला पाई, यह सौभाग्य देवकी और वसुदेव को नहीं प्राप्त हो पाया जो नंद और जसोदा को प्राप्त हुआ। जन्म देने वाली माँ देवकी अपना स्तन नहीं पान करा पाई, वसुदेव नहीं उस वात्सल्य बाल लीला का दर्शन कर पाए, वो सुख नहीं ले पाए, और जसोदा और नंद इस अवसर को प्राप्त कर पाए। कौन ऐसी विशेषता है कि जन्म देने वाले माता पिता उस सुख को नहीं ले पाए और नंद और जसोदा उस सुख को प्राप्त किए, ऐसा कौन विशेषता है इनके अंदर। तो वास्तव में प्रश्न तो लोक दृष्टि से कर रहे हैं महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को पता है, फिर भी दो विशेष कारण होते हैं प्रश्न करने के। कभी कभी तो अपने जानकारी की दृढ़ता के लिए पूछा जाता है, जाने दाढ़ी लागे पूछे साधु रे स्वभाव, तो अपनी ज्ञान अपने जानकारी के दृढ़ता के लिए कि मैं ठीक से जानता हूँ कि नहीं, कोई अथराइज प्रमाणिक व्यक्ति आगे सामने आ गया तो उससे जिज्ञासा कर लेना चाहिए कि हम जो जानते हैं वो ठीक है कि कहीं गलत फहमी में तो नहीं है, पूछ लेने पर क्लियर हो जाता है। जब वो कोई तत्वेता प्रमाणिक व्यक्ति बोलता है तो अपना ज्ञान कन्फर्म होता है, क्लियर कि हम ठीक जानते हैं, अथवा कोई गड़बड़ जानते हैं तो उसमें सुधार हो जाता है। और दूसरी बात कभी कभी होती है कि सामने कुछ लोग अनभिज्ञ लोग बैठे होते हैं, तो ऐसे अनभिज्ञों पर कृपा करके कोई जानकार व्यक्ति भी जिज्ञासा कर देता है कि प्रमाणिक वक्ता से सुनकर ये लोग जान जाएंगे। तो महाराज परीक्षित सब कुछ जानते हैं कि जसोदा और नंद बाबा का क्या पोजीशन है, फिर भी पूछ रहे हैं। तो इनके प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न नहीं हुए, कितना दिव्य वात्सल्य रस का वर्णन कर रहे थे और बीच में प्रश्न कर दिए, इतना उटपटांग, उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उत्तर तो देना पड़ेगा। तो सामान्य लोगों के अनुसार ध्यान में देते हुए एक सामान्य उत्तर देते हैं। श्री शुक उवाच, द्रोणो बसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तम उवाच। हे महाराज, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे और उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। द्रोण और धरा ये लोग ब्रह्मा के आदेश पालन करने करके तपस्या करना चाहते थे। ब्रह्मा जी इनको आदेश दिए तो तपस्या कर रहे थे। उस समय इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, जब सृष्टि करना है, ब्रह्मा के कार्य में सहयोग करना है, तो कुछ मांग किए ब्रह्मा जी से। तो वो मांग क्या किए, जात जो नव महादेवे भुवि विशेश्वरो हरऊ भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिं तरेत। उन्होंने मांग किया कि हे ब्रह्मन, हे भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब स्वयं भगवान जगदीश्वर के प्रति हमारी अनन्य प्रेमा भक्ति हो, उनके प्रति हमको स्नेह हो और हमारे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, जिससे हम उनको लाल लड़ा सकें, प्रेम कर सकें। और एक विशेष बात कहते हैं, भक्ति स्याद परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरेत, उनके प्रति हमारा प्रेम हो। भागवत में भक्ति का अधिकांशतः अर्थ प्रेम से होता है। उनके प्रति हमारा प्रेम हो, ययांजो दुर्गतिम तरेत, जिनसे, जिस भक्ति से अनायास ही व्यक्ति दुर्गति से पार हो जाता है। दुर्गति से तरने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना है, केवल भक्ति करना है, भगवान के विषय में सुनना, बोलना, उनकी सेवा करना इत्यादि। तो ब्रह्मा जी से लोग प्रार्थना किए कि श्री भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, जिस भक्ति को प्राप्त करने पर व्यक्ति आसानी से संसार के दुखों से पार हो जाता है। जो दुख में पड़ा हुआ है, दुर्गति में पड़ा हुआ है, उस दुर्गति से पार हो जाता है, ऐसा प्रेमा भक्ति मुझको प्राप्त होनी चाहिए। पार होने के बाद तो छोड़िए, भान भी नहीं होता है कि हम संसार के दुख में दुखी हैं। भागवत में वर्णन है कि संसार समुद्र भजन करने वाले के लिए इतना छोटा हो जाता है, सिमट जाता है, जैसे गाय के बछड़े, छोटा बछड़ा बच्चा बरसात के दिनों में चलता है, जब पृथ्वी गीली है पानी से, वर्षा से, उस समय वो बछड़ा चलता है तो उसके चलने से जमीन में गड्ढा बनता है, छोटा सा धस जाता है मिट्टी में, तो मिट्टी में धसने से थोड़ा सा गड्ढा होता है और फिर बरसात, वर्षा होने से वो गड्ढा भर जाता है, छोटा सा गड्ढा। तो एक छोटा सरोवर है, समुद्र कहते हैं कि पूरा भव समुद्र वत्स खुर बछड़े के चरण से बने हुए गड्ढे के समान सिमट जाता है, छोटा हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे हजारों गड्ढे पृथ्वी पर हो बछड़े के खुर का बना हुआ, गाय का खुर थोड़ा बड़ा होता है, बछड़े का छोटा, तो बछड़े के पैर से बने हुए गड्ढे के समान ये भवसागर हो जाता है। और उस समय अगर कोई व्यक्ति चलता है तो हजारों गड्ढे पार कर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि हम कोई तालाब पार किए, समुद्र पार किए। वैसे ही भजन करने वाले के लिए भव समुद्र बिल्कुल सिमट जाता है, छोटा हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं कि छोटा की बात तो छोड़िए, सूख जाता है, पूरा पूरा एकदम रहता ही नहीं कोई समुद्र, कोई भयावह चीज। नाम जपने की, भक्ति करने की ये महिमा है। राम भालु कपि कटुक बटोरा से तुहे तुश्रम किन्ह में थोरा, कह रहे हैं कि भगवान राम बंदर भालू की सेना जुटा कर लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाए, सेतु हेतु श्रम किन्ह में थोरा, बहुत ज्यादा परिश्रम किए, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। स्वयं निर्णय नहीं दे रहे हैं, आप लोगों पर छोड़ देते हैं। आप विचार कीजिए कि स्वयं भगवान से भगवान का नाम बढ़कर है कि नहीं। जो भगवान इस पृथ्वी पर आकर लंका जाने के लिए पुल बनाना चाहे समुद्र पर, बनाए, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद पुल तैयार हुआ। सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोड़ा, बहुत ज्यादा परिश्रम हुआ, लेकिन उन्हीं राम का नाम लेने पर, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ये भव समुद्र सुख जाता है। करहु विचार सुजन मन माही, हे सज्जनों आप मन ही मन विचार कीजिए, ज्यादा इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार कीजिए नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। तो इस प्रकार जिनके भक्ति से ये संसार दुख समाप्त हो जाता है, अंजसा आसानी से पता भी नहीं चलता, उस प्रभु के प्रति हमारी भक्ति हो, ये द्रोण और धरा ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, मांगे। अस्तित्व युक्त स भगवान ब्रजे द्रोणो महाजसा, जगे नंद इतिख्या तो जसोदा सा धरा भवत। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा अस्ति इत्युक्त, ऐसा ही हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। तो सब भगवान ब्रजे द्रोणो महाजसा, वे ही परम जसस्वी भगवान मैं, एकदम भगवान में जिनका मन लगा हुआ था, वही द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद द्रोण। और उनकी पत्नी धरा जब पृथ्वी पर आई, ब्रज में आई, तो उनका नाम हुआ जसोदा, जो उनकी पत्नी बनी। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने, दंपत्योन्नित रामासीत गोप गोपी सुभारत। कहते हे परीक्षित, हे भरत वंशी, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा ये नंद और जसोदा इनसे अत्यंत प्रेम किए। यद्यपि सभी लोग प्रेम किए, लेकिन नंद और जसोदा के तो पुत्र बनकर आए थे, इसलिए स्पेशल प्रेम किए इनसे। तो इस प्रकार स्वाभाविक इनका प्रेम हो गया। ये दंपत्यो नितराम आसित, ये दोनों दंपति, पति पत्नी नंद जसोदा, बहुत प्रेम किए, क्योंकि ततो भक्तिर भगवती, भगवान के प्रति इनकी भक्ति उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गई। पुत्री भूते जनार्दने, स्वयं जनार्दन अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले स्वयं भगवान कृपा करके इनका पुत्र बने। कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम क्रतुम ब्रजे विभु, सह रामो वसंशक्रे तेषां प्रीतिम स्वलीलया। ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम विभु, श्री भगवान कृष्ण, सह रामो वसंशक्रे तेषां प्रीतिम स्वलीलया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में आए ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए। ब्रह्मा जी कह दिए थे ठीक है ऐसा ही, तथास्तु अस्ति इत्युक्त, ऐसा ही हो। तो ब्रह्मा जी के बात सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण श्री बलराम जी के साथ आए ब्रज में, और आ करके समस्त ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा और जसोदा को सुख दिए, आनंद प्रदान किए। तो संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे दिए, तो ये तो सामान्य उत्तर हो गया, लेकिन उत्तर सुनकर महाराज परीक्षित प्रसन्न नहीं हुए। उनके चेहरे को देखकर सुखदेव गोस्वामी को ऐसा लगा कि संतुष्ट नहीं हुआ उत्तर से। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और सनातन गोस्वामी भी, कि महाराज परीक्षित जब उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तो सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते थे कहना, लेकिन अब कहना पड़ा। सामान्य लोगों के समझ के बाहर का चीज है, लेकिन शिष्य से उस लेवल का है परीक्षित, वास्तव में इसको बताना पड़ेगा। यह समझ कर सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के प्रति नंद जसोदा के अति चमत्कारमय असाधारण महावात्सल्य के मुख्य सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए स्वयं बिना जिज्ञासा के दाम बंधन लीला को व्यक्त करना चाह रहे हैं। अगले अध्याय में आप कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं महाराज परीक्षित, लेकिन स्वयं सुखदेव गोस्वामी एक क्षोभ के साथ कि मैंने उचित उत्तर नहीं दिया इसको, तपस्या के फल से यशोदा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह वंचना है, मैं इसको ठग दिया। वास्तव में यशोदा कृष्ण की नित्य जननी है और मैंने ब्रह्मा के परिणाम से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कहकर मैंने अपमान किया इस सौभाग्य का, इस वात्सल्य का। ब्रह्मा का कहां ताकत की इस तरह का वरदान दे। ब्रह्मा शिव और श्री लक्ष्मी को भी वह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया जो माँ यशोदा को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा के वरदान से संभव है? बिल्कुल नहीं। माँ यशोदा का स्थान बहुत ऊपर है। तो इसको कहने के लिए असाधारण महावात्सल्य प्रेम के मुख्य सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए दाम बंधन लीला के उपक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं अब आगे अगले अध्याय में। नंद यशोदा भगवान कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। वसु और धारा यद्यपि जरूर ब्रह्मा के वरदान से आए थे लेकिन वो यशोदा और नंद बाबा के शरीर का आश्रय ग्रहण किए थे। वह स्वयं इस अवसर को नहीं प्राप्त किए, नित्य माता पिता के शरीर में आकर उस सुख को प्राप्त किए थे, ऐसा विचार है श्रील चक्रवर्ती ठाकुर का। सनातन गोस्वामी भी इस विचार को दिए हैं। तो फिर कहना प्रारंभ करते हैं अगले अध्याय में क्या घटना घटी। बार बार उलाहना आ रहा था माँ यशोदा के पास कि आपका लाला बड़ा नटखट हो गया है, हमारे घर में चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। सुनते सुनते माँ यशोदा बिल्कुल उब चुकी थी। तो मन में आया कि अब अपने हाथ से माखन निकाल कर अपने लाला को खिलाना है। तो सुखदेव गोस्वामी इस दिव्य लीला का प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ी सावधानी के साथ सुनिए, यद्यपि आप लोग अनेकों बार सुन चुके हैं फिर भी यह विशेष लीला है और हम वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए तो बहुत ही आनंददायक है। भगवान अपने भक्त के वश में है, भक्त वात्सल्यता इस लीला में प्रकट हो रही है। माँ यशोदा उनको उखल में बांध दी। इतना स्नेह है, इतना वात्सल्य है कि इतना प्रेम करती है कि भगवान उस प्रेम के अधीन होकर बंध ही गए। एक आचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म को आत्मा माने वो ज्ञानी, वो अपनी मस्ती में रहे, निर्विशेष निराकार का चिंतन करे, कोई बात नहीं। जो स्वामी माने उनका आरती उतारे, भजन करे, और जो ब्रह्म को अपना बेटा मानता है तो वो ब्रह्म का पालन करने के लिए चिंतित रहे, कैसे सुधरेगा, बिगड़ रहा है, यह है वात्सल्य। तो इस वात्सल्य से पूर्ण माता यशोदा एक दिन विशेष स्नेह पूर्वक माखन निकालना चाहती हैं। प्रतिदिन नहीं निकालती हैं, एकदा शब्द पर बहुत लिखे हैं आचार्य लोग। एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरा निजुक्ता सु निर्ममंथ स्वयं दधी। तो एकदा का अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी वैष्णव तोषणी में करते हैं कि यहाँ एक विशेष दिन, एक दिन, उस दिन दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन माँ यशोदा माखन निकालने का प्रयास करने लगी। घर में बहुत काम धंधा बढ़ चुका था क्योंकि अब इंद्र पूजा का दिन आ रहा था, दूसरे तीसरे दिन ही। तो घर में बहुत से काम धंधा, घर की सफाई करना, बहुत पकवान बनाना, बहुत सामान जुटाना था। तो काम तो बहुत था लेकिन माँ के मन में आया कि अब अपने लाला के लिए मुझे माखन निकालना है। प्रतिदिन नहीं माखन निकालती थी, घर में बहुत सारी दासियां थी लेकिन आज स्पेशल माखन निकालने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो इसके पहले सनातन गोस्वामी कहते हैं कि केवल दही नहीं स्पेशल मथने लगी उसी दिन, इसके पहले नंद बाबा के लाखों गायों के बीच में कुछ स्पेशल गाय थी जिनको पद्म गंधा कहा गया है। जैसे श्याम वर्ण का एक कान वाला घोड़ा बड़ा दुर्लभ है, भागवत में एक जगह वर्णन आया है कि एक राजा अपनी बेटी के विवाह करने के लिए मांग किया कि 1000 घोड़ा चाहिए और जिसका सारा शरीर उजला हो और एक कान काला हो, बस। तो बहुत मुश्किल से जुटाया गया, बड़ा दुर्लभ है। दुष्प्राप्य असंख्य गायों में 6-7 गाय ऐसी थी, सनातन गोस्वामी कहते हैं, जो पद्म गंधिनी थी, कमल का गंध निकलता था और अति सुस्वादु दूध देने वाली थी, जो केवल सुगंधित पौष्टिक घास खाती थी और वही दूध कृष्ण बलराम के लिए रखा जाता था। दूह करके उसको दूध भी पिलाती थी माँ यशोदा, दही भी, माखन उसी का निकाल कर उसी को भक्षण करते थे, रुचिकर होता था कृष्ण के लिए। तो ऐसा विचार करके माँ यशोदा एक दिन सोची कि पता नहीं दूध दूह कर खीरक से लाने में किसी का नजर पड़ जाता होगा तो बच्चे खा नहीं रहे हैं। बच्चे कभी कभी भोजन दूषित हो जाता है, दूषित दृष्टि पड़ने पर बिरच जाते हैं, नहीं खाते हैं, खाकर भी उल्टी कर देते हैं। तो अत्यंत स्नेह के कारण माँ सोचने लगी कि अपने पुत्र के रुचि के अनुरूप मुझे नवनीत निकालना है, और पता नहीं ये दासियां कैसे दही बनाती हैं, किस तरह से दूध आता है, किसी का नजर पड़ जाता होगा, या ये लोग असावधानी से बनाती हैं, खाता नहीं है, खाता है, ये है वो है कुछ कहकर, और किसी तरह जबरदस्ती पिला भी देती है तो उल्टी कर देता है। तो अब मुझे दूध दुहना पड़ेगा। तो स्वयं माँ यशोदा खीरक में गई, ये स्पेशल घटना है, वो रोज दूध नहीं दुहती थी लेकिन आज अपने पुत्र के लिए दूध दुहने गई। पद्मगंधा गाय का दूध अपने हाथ से निकाली, अपने स्नेहमय आंचल में ढक कर लेकर घर में आई, किसी का नजर न लगे, और उसको गर्म भी की सबके आंख को बचाते हुए, कोई देखे ना। और वो सब घटना टोकने लायक था, कोई भी कहता अच्छा मैया आज दूध दुहन का क्या बात है, आज दूध दुह रही हो या दूध गर्म कर रही है तो भी आश्चर्य है, क्योंकि दासियां करती थी और जामुन भी डाली एकदम एकांत में छिपा कर, और फिर दही जब तैयार हुआ तो भोर में सूर्योदय से पहले दही को मथना प्रारंभ की, क्योंकि सूर्योदय के बाद दही में खटास बढ़ने लगता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है दही खट्टा होने लगता है। तो भोर में एकदम लगभग 3:30-4 बजे दही मथने लगी, एकदम भोर में जग कर, और दूसरे दासियों को कह रहे हैं कि गृह दासिशु, घर के दासियों को कर्मांतरण निजुक्तासु, और घर में काम था उन कामों में लगा दी, तुम लोग एक काम कर लो, एक बर्तन साफ कर लो, घर साफ करो, ये करो वो करो, दूसरे कामों में लगा करके निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं का मतलब कि रोज नहीं मथती थी, रोज दासियां मथती थी लेकिन आज स्वयं मथ रही हैं। और कौन मथ रही है, यशोदा। यशोदा कौन है, नंद गेहिनी, महाराज नंद की पत्नी रानी जी, रानी जी हैं, रोज नहीं मथती थी लेकिन आज दही मथने लगी, स्वयं मथने लगी। तो दूध दुहना, गरम करना, जामुन डालना, दही बनाना, दही को मथना, ये सारा कार्य अपने हाथ से करूंगी, यह संकल्प लेकर माँ यशोदा दही मथने लगी। और फिर एकदा और यशोदा का अर्थ एक टीकाकार करते हैं कि एकदा का अर्थ है एकम ददाती ती एकदा, जो एकदा यशोदा का विशेषता है, और जसांसी ददाती ती यशोदा एक अर्थ करते हैं कि एक का अर्थ है अद्वितीय, जिनके समान दूसरा कोई न हो, और पैदा होते ही फटाफट हथकड़ी बेड़ी खुल गया माता पिता का, और 3 जन्मों की जन्म कुंडली बनाने लगे माता पिता का कि पहले आप लोग पिशनी और सुतपा के रूप में मुझको प्राप्त करना चाहे, उस समय भी मैं पुत्र बना था, दूसरे बार उस समय मेरा नाम हुआ पिशनी गर्भ, और इसके बाद आप लोग अदिति और कश्यप के रूप में आए, उस समय भी मैं आपका पुत्र बना था, मेरा नाम उपेंद्र हुआ, और तीसरी बार मैं फिर आपका पुत्र बनकर आया हूँ। जो इतना सुंदर बोल सकता है, सुंदर दिव्य श्रृंगार में है, पूरा सुंदर शरीर प्राप्त करके आया है और दिव्य कथा शैली है, इस दिव्य अलौकिक पुरुष को जो अद्वितीय है, जिसके समान कोई साधारण बच्चा जन्म नहीं लेता, जिनका जन्म ही दिव्य है, जिनका हर कर्म दिव्य है। और भगवत गीता में कहते भी हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः, ऐसे अद्वितीय पुरुष को संपूर्ण समाज को देने वाली का नाम है एकदा। अद्वितीय अद्वितीय माता मैया ने हमको उस एक को अद्वितीय पुरुष को प्रदान की, इसलिए मैया जसोदा की विशेषता है एकदा। ये कहते हैं आप फिर जसोदा संपूर्ण विश्व को अद्वितीय पुरुष दी, और उस पुरुष को क्या दी तो वह है जसोदा। जसांसी ददाती थी जसोदा, ऐसा अद्भुत जस दी, कौन जानता था कि कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं, कोई नहीं जानता था। भक्तों के अधीन है, सारे सृष्टि के मालिक हैं, चर चराचर जगत इनके वशभूत हैं, शिव ब्रह्मा आदि इनके नौकर हैं, दास हैं, संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति पालन करने वाली दुर्गा इनकी दासी है, हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व जस भुवना विभर्ति दुर्गा, लेकिन वह भी इच्छा चेष्ट तेषा गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो इतने महान सर्वाराध्य ईश्वर को भी अपने अधीन रख कर दिखा दी, इनको भक्त वात्सलता का जस प्रदान की, संपूर्ण जगत जान गया कि अपने भक्तों के अधीन है, जो प्रेम से इनकी सेवा करे, इनसे स्नेह करे, प्रेम करे तो उनके बस में हो जाते हैं। अतः जसांसी ददाती, उनको जस दी, ऐसा जस कभी किसी ने नहीं दिया था, ये भक्त वत्सल है ऐसा जस नहीं दिया था। तो भक्त लोग कभी कभी भगवान से ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि वो कभी भूलने लायक नहीं है, एकदम जिद कर ली। जब माँ जसोदा आगे आप सुनेंगे कि वो बांधने का प्रयास करने लगी, तो वो बांधते समय बोलने लगी कि तुमको आज दिन भर बांध कर रखूंगी, खेलने नहीं जाने दूंगी। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बच्चों के साथ जो उद्धम मचाता है ना, आज कहीं नहीं जाएगा खेलने, और घर में भी खाता है और दूसरे घर भी जा जाकर माखन चोरी करता है, तुम्हारा पेट नहीं भरा है, दिन भर भोजन नहीं दूंगी, बंधे रह पशु की तरह, आज तुमको न खेलना है न खाना है। तो भगवान तो चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनका ऐश्वर्य का अच्छा बकरी का बच्चा समझती है, बांध कर दिखा दे, तुम ही बांध सकती हो, ऐश्वर्य सामने अड़ गया। और माँ लेकर रस्सी बांधने का प्रयास करने लगी, दो अंगुल कम, रस्सी लाओ, रस्सी मंगा मंगा कर बांध रही है कम, पूरा ऐश्वर्य माँ जसोदा के साथ कुश्ती के लिए तैयार हो गया, कौन जीतता है। तो गोपिया कहती है मैया ये नहीं बनेगा, इसके भाग में बंधन नहीं है। कहती नहीं बनेगा, मैं बांध कर मानूंगी, कुछ भी हो जाएगा बांधूंगी। कहती अच्छा तो बांध ही लीजिए, सब लोग हंस रही हैं, रस्सी ला रही हैं, दो अंगुल के जगह पर 100 मीटर रस्सी जोड़ने पर फिर दो अंगुल, एक राउंड में ही कम हो जाता था। माँ जसोदा को भी हंसी आने लगा, अरे मुट्ठी भर कमर बढ़ रहा न है न कुछ हो रहा है, फिर भी क्यों घट रहा है, ये क्या हो गया है, उसके पास जाते ही घट जाता था। तो माँ को भी हंसी आ रहा है, परिश्रम भी कर रही है, पसीना से लथपथ है, लेकिन बांधना चाहती है, बांधूंगी बांधूंगी निश्चित बांधूंगी, एकदम जिद कर ली। और बंधन क्यों नहीं है, इसके कमर में करधनी है, ये जंगिया पाना है, बंधन ही है ना, तो इसको बांधूंगी, आज उखल में बांधूंगी। जब जिद एकदम करने लगी तो भगवान कहे कि अरे यार क्या अपने ऐश्वर्य दिखाने के चक्कर में हो, चलो बंध जाओ, ये जब चाहती है तो कृपया शील स्व बंधने, वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी, अपने माँ के वात्सल्य में बंध गए, अपने बंधन में बंध गए, चलो बंध जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान बंध कर अपना मान अपना ऐश्वर्य रख दिए किनारे और माँ के अधीन हो गए, अपना मान तले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। तो भगवान ने प्रकट कर दिए कि हम भक्त के अधीन हैं। ऐसे बंधे हुए भगवान भक्तों को इतना अच्छा लगते हैं कि एक महीना स्पेशल आरती करते हैं, बंधे रहिए, बहुत अच्छा लगते हैं, क्योंकि भक्त के अधीन हो गए हैं, भक्त का विजय हुआ है, इसलिए भक्त लोग बहुत खुश रहते हैं। तो इस प्रकार एकदा गृहदासीसु जसोदा नंद गेहिनी कर्मांतर निजुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दधि मथने लगी। और इसके साथ यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान गायत। अब माँ दही मथ रही है, दही मथते हुए उनके बाल लीलाओं को गा रही हैं। यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान गायत। भगवान के जो अद्भुत अलौकिक लीला प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है, उसको वहाँ के कवि लोग लोक भाषा में कविता करके बना कर रखते थे, क्योंकि सारी घटनाएं अलौकिक होती थी, आश्चर्यजनक। अब पुतना का उद्धार हुआ तो ये अद्भुत घटना हुई, सकट भंजन अद्भुत घटना है, तो इसको कविता में लिखते थे ब्रजभाषा में, तो प्रसिद्ध हो जाता था। तो उसको माँ गा रही हैं, गाते हुए यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि मथते समय निकट में ही कृष्ण सोए हैं, और माँ को विशेष ध्यान है कि वो जगने के बाद तुरंत माँ का स्तन पीता है। और माँ लेटे रहती है, नींद में तो नहीं रहती, लेकिन जब तक लाला जग नहीं जाएगा तब तक बेड पर रहती है गोद में लेकर, और जगते हुए पहला काम माँ का स्तन पीना। तो आज माँ बेड छोड़कर बगल में दही मथ रही है। तो गाना दो कारण से जरूरी है, एक तो मन भगवान की लीलाओं में लगा हुआ था इसलिए स्वाभाविक गीत निकल रहा था, अपने बेटे की चरित्र को गान कर रही थी, और दूसरा कारण यह भी था कि अगर जगेगा खोजेगा तो उसके जगते ही हमारा आवाज सुनाई देना चाहिए, तो फिर वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, समझ जाए कि माँ यहाँ बोल रही है तो आ जाएगा। तो इस प्रकार सोचकर माँ गा रही थी, और उस समय स्मरण करती हुई गाती जाती थी। और यहाँ एक विशेष शिक्षा यह भी प्राप्त होती है कि अगर किसी व्यक्ति को समय न मिले तो काम करते हुए भी भगवान के गुणों को गा सकता है। यह अद्भुत चरित्र गीतों में जो निबद्ध किया गया था उसको माँ गा रही थी। तो किसी भी समय काम धंधा करते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, भोजन बनाते समय, या पहले स्त्रियां जाता पीसती थी आटा निकालने के लिए तो उसको पीसते समय भी गाती थी, तो कूटते समय, पीसते समय, सब समय भगवान के गुणों को गाया जा सकता है। तो दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान गायत, वाणी से कीर्तन कर रही थी, शरीर सेवा में लगा हुआ था और मन से उनके लीलाओं का स्मरण कर रही थी, एकदम पूर्ण कृष्ण भावना भावित पूरा। और माँ का पोज कैसा था, किस रूप में थी, पूरा सेवा के मूड में, आज स्पेशल वस्त्र भी पहनी है, उनके दधि मंथन के वीडियो बना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कैसा उनका शरीर है, कैसा वस्त्र पहनी है, कैसी स्थिति है। तो एक ही श्लोक, बड़ा श्लोक है, उनके अनेक सौहार्द का वर्णन करते हैं, उनके सौहार्द और सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तीन तरह के सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं एक श्लोक में, एक अंग सौंदर्य, स्नेह सौंदर्य और सेवा सौंदर्य, तीनों इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंग सौंदर्य का वर्णन करते हैं, क्षौमम वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। माँ जसोदा अपने कटी भाग में रेशमी लहंगा पहनी है और उसको ऊपर से बंधन लगाई है, बेल्ट लगाकर बांधी है कि खुल न जाए, सरक न जाए, और बिभ्रति सूत्र नद्धम, सूत्र से बांधी है, क्षौमम वासः। और रेशमी लहंगा क्यों पहनी है, क्योंकि रेशम पवित्र वस्त्र होता है, अगर अचानक कोई आ जाए, कोई दासी और किसी की नजर पड़ जाए कि जसोदा दही मथ रही है तो नजर नहीं लगेगा, वो टोक भी दे कि क्या कर रही हो, तो वस्त्र पर ही उसकी दृष्टि पड़ेगी और उसका जो दृष्टि पड़ने से बुरा हो सकता है वो नहीं होगा। रेशमी वस्त्र परम पवित्र वस्त्र है, इसलिए माँ रेशमी वस्त्र पहनी थी कि अचानक बीच में दधि तो देर से मथेंगी या कोई देख लेगा तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए रेशमी वस्त्र पहनी थी। और उसको ऊपर से बांध इसलिए दी थी कि कहीं प्रथम बार दही मत रही है वो बस ही सरकने लगेगा तो दही मथेंगे कि उसको बनाए सजाएंगे, इसलिए बांध कर एकदम काम करने सेवा करने के मूड में है। यह है अंग सौंदर्य। और स्नेह सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि जब स्मरण कर रही है कृष्ण का, पुत्र स्नेह स्मृत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्रु, जब माँ दही मथ रही है और बार बार पुत्र का स्मरण कर रही है स्नेह से, तो उनका अस्तन कंचुकी से बाहर चू रहा है दूध, कुछ जुगम दोनों अस्तनों से स्नेह के कारण स्नुतः चुचुआ रहा है। अस्तन के दूध को चिंता बन गई कि आज तो मैया स्पेशल माखन निकालने जा रही है और जगते ही माखन प्रस्तुत कर देगी तो हमारा क्या होगा, हम किस काम में आएंगे। अस्तन के दूध को चिंता लग गई क्योंकि वहां सब कुछ अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। वो सोचने लगा अस्तन का दूध कि अरे हमारा क्या होगा, आज तो माखन प्रस्तुत करेगी और उसी को खाने लगेंगे, तो जब माखन मधुर मिल जाएगा तो हमको नहीं पिएंगे, तो जगते ही हम पर दृष्टि पड़ जाए इसके लिए वो अस्तन से बाहर चुचुआने लगा, कंचुकी से बाहर चू रहा था, दिख रहा था कि दूध टपक रहा है माँ के स्तन से। और जात कंपम, और इस भय के मारे वो कांप भी रहा था, मैया ऐसे तो शरीर हिल रहा था इसलिए कांप रहा था, लेकिन जात कंपम पर यह भी लिखते हैं कि वो कांप भी रहा था कि पता नहीं आज मुझे पान करेंगे कि नहीं। तो माँ मथ रही थी और वो हिल रहा था, और दृष्टि शुभ्रु, बार बार मैया मथते मथते पलंग की ओर भी देखती थी, जग गया क्या, जगा तो नहीं, जगने का टाइम हो गया था। इसलिए शुभ्रु, शुभ्रु मतलब सुंदर भौहें वाली माँ यशोदा, स्नेह का सौंदर्य है, स्नेह के कारण स्तन चुचुआ रहा है, स्नेह के कारण दृष्टि बार बार पलंग की ओर जा रहा है, तो देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और रज्वाकर्षाश्रम भुज चलत कंकड़ौ कुंडले च सीनम वक्तम कबर बिलगत मालती निर्ममंथ, यह है सेवा सौंदर्य। तो कह रहे हैं रज्वाकर्षाश्रम भुज चलत, कभी अपने जीवन में दही नहीं मथी थी और आज दही मथ रही हैं, कार्तिक के अमावस्या के दिन दीपावली के दिन दही मथ रही हैं, जाड़ा का मौसम है, लेकिन रज्वा कर्ष रसी खींचने के कारण श्रम भुज चलत, भुजाओं में परिश्रम का अनुभव हो रहा है, और जब भुजाएं सेवा में लगी हुई हैं तो हाथ में जो कंकड़ पहनी है वो कंगन हिल रहा है और उसमें आवाज हो रहा है, उसको भी आनंद आ रहा है कि आज हम उस दिव्य हाथ में हैं जो कृष्ण की सेवा में लगा है, तो उसमें मधुर आवाज आ रहा है। और कुंडले च, जब मैया गाते गाते भगवान की लीलाओं को गान गा रही है तो कान में जब पड़ता है तो कान बहुत आनंदित है, उसमें जो कुंडल पहने हुए कुंडल नाचने लगता है कि मैं आज धन्य हूं उस कान में हूं जिसमें कृष्ण के मधुर गीत आ रहा है, तो वो भी हिल रहा है, कुंडल हिल रहा है, कंकड़ हिल रहा है और अस्तन हिल रहा है, और इसके साथ स्वीनम वक्त्रम कबर बिगलत, फिर माँ को परिश्रम हो रहा है, स्वीनम माने पसीना निकलने लगा शरीर से, जाड़े की भोर में पसीना निकल रहा है। और कबर बिगलत, जो केश में जूड़ा बांधी है उस जूड़े पर मालती का फूल माला बनाकर बांध ली है, तो सिर के ऊपर बंधा हुआ मालती का फूल सोच रहा है धिक्कार है मुझको, मैं ऐसे मैया के सिर पर चढ़ा हूं जो कृष्ण सेवा में समर्पिता है, तो मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे मैया के चरणों में जाना चाहिए, तो सिर का वो मालती का फूल नीचे चू रहा है, गिर रहा है, मालती निर्ममंथ, नीचे फूल गिर रहा है, पुष्प गिरते जा रहे हैं, गुथे हुए कबर विलगत, वो कबर से केस में बंधे हुए मालती नीचे आ रही है, नीचे गिर रहा है। तो इस प्रकार दधि मत्ते समय मैया बड़े आनंदित है, आनंद में गा रही हैं, उनका सारा अंग प्रफुल्लित है, प्रसन्नता में है, और वास्तव में यही देह धारण का सौभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजे रघुवीरा। वास्तव में वही शरीर सुंदर है, सौभाग्यशाली है, प्रशंसनीय है जिस शरीर को प्राप्त करके भगवान की भक्ति की जाए, सेवा की जाए, नहीं तो बेकार में वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। भागवत में भी अनेक जगह ऐसा वर्णन है कि जो शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगता वह निरर्थक है, व्यर्थ है, लाश है। तो सारे अंगों का वर्णन अलग अलग किया गया है। तो माँ यशोदा बहुत प्रसन्न है, बड़े आनंदित हैं, दही मथ रही हैं और उनकी इंद्रियां बड़ी सुंदर लग रही हैं, कृष्ण सेवा से युक्त हैं। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनन्ति जननीं हरि गृहीत्वा दधि मन्थानं न्यस्य दध प्रतिमा वहन। ताम स्तन्य काम, उसी समय श्री कृष्ण स्तन्य काम हो गए, जो पूर्ण काम है, जिनको बाहरी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है वो अब स्तन्य काम हो गए, स्तन्य काम हो गए। स्तन्य का अर्थ है स्तन की संपत्ति, दूध की इच्छा हो गई उनको पीने के लिए, वो जग गए। कृष्ण ज्यों ही जगे ते माँ का स्तन पीना चाहे और सोचने लगे मैया कहाँ है, अरे रोज मेरे साथ रहती थी आज कहाँ है। तब आसाध्य मथनंतिम जननी हरिम, जहां मथ रही थी वहां भगवान आ गए, क्योंकि आवाज सुनाई दे रहा था मैया, पलंग से उठे और आ गए। और आने के बाद जननी माँ के पास आए हरि भगवान, तो आते ही कुछ बोल नहीं रहे हैं। गृहीत्वा दधि मंथानम, जो दधि मथ रही थी, दधि के मटका के अंदर जो मथानी था उस मथानी को पकड़ लिए, स्टॉप बंद करो ये क्या हो रहा है, पकड़ लिए हाथ से सीधे, बोलते नहीं। गृहीत्वा दधि मंथानम, मथानी पकड़ कर न्यसेधत, निषेध कर दिए, रोक दिए। और यह व्यवहार कैसा हुआ, प्रीतिमा वहन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मानो प्रेम का पिटारा लाकर माँ यशोदा के सामने पटक दिए। प्रीतिमा वहन, प्रीति को आवहन ढोते हुए आए, बड़ा सुंदर लग रहे थे, श्याम सुंदर। प्रेमैव प्रभुरीश्वर, भगवान के विषय में कहा गया है कि प्रेम ही ईश्वर है, प्रभु है, सर्व समर्थ है। भगवान एकदम साक्षात प्रेम प्रकट कर दिए। कुछ बोलते मैया मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पिलाओ, ये क्या कर रही हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आकर सीधे पकड़ लिए, बंद कर दिए। एक आचार्य कहते हैं ये क्या कर रही हो, प्रतिदिन मुझको लाल लड़ाती हो, गोद में लेकर खिलाती हो, एक काठ को कैसे क्या कर रही हो, इस लकड़ी को आज लाल लड़ाती हो, मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया, बंद करो, पकड़ लिए एकदम। ऐसा नहीं होगा, मेरा स्थान लकड़ी नहीं ले सकता, तुम इसको क्या कर रही हो। तो माँ चुपचाप खड़ी है, वो भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी नहीं बोल रही है, चुपचाप देख रही है। तब क्या कहते हैं आगे, तमं कमारो नम पायत स्तनम स्नेह स्मृतम सस्मित इच्छति मुखम अतृप्त मुझसे जवे न साया उत्सिच माने पयसी त्वधिश्रिते। इस प्रकार भगवान जब देखे कि मैया दही मथ रही है, तो पहले तो मथानी पकड़ कर रोक दिए, और इसके बाद अब क्या करते हैं, तमंक मारूढ़, अब गोद में चढ़ना है। तो गोद में चढ़ने के लिए मथानी को पकड़कर एक पैर रखे मटके के ऊपर और दूसरा माँ के कंचुकी को पकड़े ऊपर से, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, चुपचाप खड़ी है, देखते हैं क्या करता है। तो मटके के ऊपर रखकर एक पैर उनके कमर पर बढ़ाए और ऊपर गला को पकड़कर गोद में चढ़ गए, और गला एक हाथ से गला पकड़े और दूसरे हाथ से माँ के कंचुकी से स्तन निकाले और पकड़ लिए, खड़ी है वहां। तब जब माँ देख ली कि ऐसा एक दूध पीना चाहता है, तब बैठ गई। तमंक मारूण हम अपाय तस्तनम, अपने प्रयास से माँ का स्तन प्राप्त कर लिए, गोद में आ गए। तब माँ बैठ गई और स्नेह स्मृतम, वो तो पहले से चू रहा था, और शायद इसलिए भी चू रहा था, एक आचार्य कहते हैं कि कृष्ण की दृष्टि पहले मुझ पर पड़ जाए, बाहर निकल रहा था तो पिलाने लगी और भगवान पीने लगे, और पीकर बहुत आनंदित है। कृष्ण बैठे हुए गोद में माँ का स्तनपान कर रहे हैं, तो सस्मित मिक्षति मुखम, मुस्कुरा मुस्कुरा कर बीच में पी कर फिर देखते हैं माँ की तरफ, तो माँ मंद मंद मुस्कान युक्त मुख को देखने लगी, देख रही है, दूध पिला रही है और अपना लाला इतना आनंदित है, उस सुख को देखकर माँ यशोदा भी आनंदित हो गई। तो दोनों माँ और पुत्र आनंद में है, वो स्तन पिला कर आनंदित है और वो पी कर आनंदित है। तब तक एक घटना घट गई, वहीं बगल में जो भोर में पद्मगंधा गाय दुही गई थी, उनका दूध जो कृष्ण बलराम के लिए स्पेशल था, वो आग पर रखा हुआ था गर्म होने के लिए, और निकट में इसलिए रखी थी कि दही मत्ते समय भी देखूंगी कहीं उसमें उफान ना आ जाए। दूध गर्म हो रहा है, आग के ऊपर है तो कभी भी उफान आ सकता है, तो उसको हटाना है या उसमें पानी छिड़क कर उसको शांत करना है, कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए निकट में दूध भी रखी थी जो गर्म हो रहा था, जो भोर में दुहा गया था, और वहीं दही भी मथ रही थी। तो जब बैठ करके दूध पिलाने लगी, तब तक अतिप्त मुच्छिर्ज जवे में साया, उच्छिर्च माने पैसी त्वधिष्ठते, दूध अब उफान ले लिया, जो गर्म हो रहा था दूध वह अंगूठी पर रखा हुआ दूध में उफान आ गया, बहुत तेज उफान आया, मैया की दृष्टि पड़ गई। आचार्य कहते हैं कि दूध में उफान इतना तेज क्यों आया, ऐसा उफान आया कि मानो सारा दूध बाहर अग्नि में गिर जाएगा, बहुत तेज उफान। तो यहां टीकाकार लोग लिखते हैं कि दूध भी सोचने लगा कि आज तो श्री कृष्ण इतना माँ के स्तन पी रहे हैं, ये तो दूध कम होने वाला है नहीं, जितना भी पिए चाहे कुछ भी वो कम होने वाला नहीं है, तो पीते जा रहे हैं और मैया आनंद से पिलाते जा रही है, तो हमारा क्या होगा, माँ के स्तन के दूध से जब इनका पेट भर जाएगा तो हम इतना परिश्रम करके पूर्व जन्म में तपस्या करके ब्रज में जन्म लिया, घास बना और पद्मगंधा गाय के पेट में जाकर दूध बना श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, तो हमारा तो कोई उपयोग ही नहीं है, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। जब हमारा जीवन कृष्ण के सेवा में नहीं लगेगा तो फिर जीना ही बेकार है। तो जब व्यर्थ जीवन को लेकर हम कहां तक भार ढोएंगे, इनके सामने ही सुसाइड करते हैं, अब आग में गिर कर बस आत्महत्या कर लेंगे, शायद दया आ जाएगी, तो बस उफान में आ गया, एकदम गिरने के मूड में। तब तक मैया की दृष्टि पड़ गई, मैया की दृष्टि पड़ी तो एकदम नहीं ध्यान दी कि हमारा लाला पी रहा है, स्तन से मुंह हटा करके और जमीन पर बिठा दी, दूध को बचाने के लिए चली गई। तो उत्सिच माने पैसी त्वधिष्ठते, एकदम अतृप्त मुत्सिर्ज, अभी भगवान तृप्त नहीं हुए थे, पी रहे थे, उनकी तृप्ति नहीं हुई थी, अभी तो पीना चाहते थे, तब तक नीचे रख दी जमीन पर, और जमीन पर रख करके दूध को बचाने के लिए चली गई। जो ही मैया खड़ा होकर दूध के तरफ बढ़ी, तेव दूध को बड़ा संकोच हुआ, बाप रे मैं ऐसे बात्सल्य में अवरोधक बना, धिकार है मुझको मैया के मैं प्रेम बात्सल्य में बाधक बना, और शर्म के मारे नीचे दब गया, अपने आप नीचे आ गया। लेकिन माँ सोची कि फिर उफान में आ जाएगा, इसलिए उस दूध को उठा करके दूसरे घर में रखने के लिए चली गई, उठा कर ले गई, और इधर भगवान अतृप्त है, अद्भुत स्थिति है, अतृप्त है, जो पूर्ण ब्रह्म है उनको स्तन काम हो गया, जो आत्म काम है, जो पूर्ण काम है, वो स्तन काम हुए, उनकी कामना हो गई माँ का दूध पीने का, और जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं वो अतृप्त है, तृप्ति ही नहीं हुई है। तो अतृप्त भगवान अब क्या सोचने लगे, आगे का श्लोक में कहते हैं, संजात कोपह स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधी दधि मंथ वाजनम भित्वा मिशाश्रु विषदस्मनारह जघास हय्यो मंतरम गतः। भगवान को क्रोध आ गया, बाप रे जिसके घर 9-9 लाख गाय है, कितना हजारों लीटर दूध जिसके घर होता है, वो कंजूसनी दूध बचाने चली गई, मुझको दूध पिला रही थी, मुझको फेंक करके दूध बचाने चली गई। अभी इसकी कंजूसी पना को दिखाता हूं, इतना बर्बाद करूंगा कि इसको पता चल जाएगा। अभी मूड बना लिए कि अब इसको दिखाना है, जिस दही के मटके में मथ रही थी दही उसको पहले फोड़ूंगा, इसके बाद जो बासी माखन घर में रखी है सारा 20 दिन 25 दिन का रखा हुआ माखन सब बंदरों को खिलाऊंगा। थोड़ा दूध बचाने गई है ना, आज बहुत बर्बाद करूंगा। और पुराना बासी माखन खाऊंगा, जो पुराना रखा हुआ माखन, और खा करके बीमार पड़ूंगा, मथुरा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा एक कंजूसी का। बीमार पड़ूंगा, ये ताजा अपने स्तन का दूध नहीं पिलाई ना, बासी माखन खाऊंगा। तो इस तरह से प्लान करके संजात कोप क्रोध उत्पन्न हो गया और स्फुरिता रुड़ा धर्म, लाल लाल ओठ एकदम फड़फड़ाने लगा क्रोध से। और संदस्य दधि दधिमंत भाजनम, और दांतों से अपने ओठ को दबाते हुए एकदम क्रोध के मुद्रा में और उस मटके को फोड़ने को सोचने लगे। तो आसपास देखने लगे कैसे फूटेगा, इसको फोड़ना है। तब तक वहां एक छोटा सा लोढ़ा मिल गया, शिला पुत्र श्रीधर स्वामी कहते हैं, पत्थर का टुकड़ा जो पहले सील बाटी से मसाला पीसा जाता था। आजकल तो जमाना ही बदल गया, लेकिन पहले पत्थर पर छोटा सा बाटी होता था जिसको लोढ़ा कहते हैं भोजपुरी में, पता नहीं इधर क्या, तो उसे मसाला पीसते हैं, नमक हल्दी मिर्चा आदि को पीसते हैं, पीसकर तब सब्जी में दाल में जहां भी चटनी आदि कुछ, मिक्सी फिक्सी कुछ नहीं था। तो उस जमाने में वो लोढ़ा दिख गया बगल में, तो भगवान उसको उठाए और उठा करके अब फोड़ना चाहे, लेकिन कैसे फोड़े, ऊपर अगर फोड़ते हैं और बगल में है सुन लेगी तो तुरंत आ जाएगी, तो एकदम पकड़ में आ जाऊंगा, तो नीचे फोड़ना है पेंदी में। तो अब मटके को बाएं हाथ से ऐसे उठाए और पेंदी में धीरे से मार दिए, फूट गया, फैल गया सारा मटका, नहीं फूटा दही फैल गया। अगर अचानक आ जाएगी तो उसी दही के अंदर ही छोड़ दिए और कह देंगे कि मैं क्या जानता हूं, तुम्हारे मथानी से फूटा होगा, कुछ कह दूंगा, झूठ बोलने में तो स्पॉट थे ही, कुछ भी कह देंगे। तो अब नीचे फोड़े कि माँ को पता न चले। और इसके साथ साथ भित्वा मिशाश्रु, आंसू नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी बनावटी आंसू आकर और रोते हुए दिखाते हैं कि हम दुखी हैं बहुत, और फिर भागते हैं एकांत में। अब तो बहुत भारी घटना होगी, दही फर्श पर फैल गया, पैरों में भी लग गया, हाथों में भी लग गया, ज्यादा फैल गया, तो अब तो माँ आएगी तो तुरंत पीटने लगेगी, इसलिए भागे। तो भागते हैं, दूसरे घर में गए और जाकर जघास हयंग वामंतरम गतः, ये दूसरे घर में जाकर रखे हुए बासी माखन को खाने लगे और बनावटी आंसू भी रखे हैं आंखों में रोते हुए कि हमको भूख लगा है तो मैं क्या करूंगा, जो मिलेगा वो खाऊंगा, इसलिए रोते हुए जाकर माखन खाने लगे। तो अब माँ यशोदा के विषय में वर्णन करते हैं। उतार ज गोपी सुश्रुतम पय पुनः प्रवेश संदेश च दध्यमत्रकम भग्नम विलोक्य ससुतस्य कर्म तत् जहास तम चापुन तत्व पश्यते। मैया यशोदा दूध को उठाकर दूसरे घर में रख गई और रखने के बाद जब लौटी तो देखती है कि मटका फूटा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। प्रविश संदिश्य च दध्य मत्रकम, दधि का मटका फूटा हुआ है और भग्नम विलोक्य, फूटा हुआ मटका देखकर स्वसुतस्य कर्म तत्, यह कर्म अपने बेटे का है, ये समझने में देर नहीं लगा, जान गई कि ये मेरे लाला की करतूत है। क्यों? क्योंकि वहां है नहीं, वहां भाग गया है। और भागते समय दही जो पैर में लगा है वो दही भी फर्श पर लगा है, उनका फुट प्रिंट दिखाई दे रहा है, चरक चिन्ह, दूसरे घर में भाग गया है। तो मैया यहाँ कृष्ण को क्रोध आया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संजात कोप, लेकिन मैया को क्रोध नहीं आया, जहास उनको हंसी आ गई, हंसने लगी, अच्छा मटका फोड़ दिया। तम चाप न तत्र पश्यति, वहां उनको देखी नहीं, और जब नहीं देखी तो और उनको हंसी आया कि तो अच्छा फोड़ दिया तो फोड़ कर भाग गया डर के मारे, भयभीत है तो हंसने लगी। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनको हंसी आई, क्रोध का तो कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी सारा क्रिया क्रोध के रूप में प्रकट हो रहा है, ऐसा क्यों? जाकर देखती है दूसरे घर में, जब चरण चिन्ह के फॉलो की तो देखी घर में गया है, घर में जाकर के छीके का मटका उतार उतार कर नीचे फेंक रहा है, बंदरों को खिला रहा है, खा रहा है, देख ली मैया, तो कही अच्छा। तब जाकर एक छड़ी उठाई, तो छड़ी लेकर जा रही है, लेकिन सब जगह चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सारी क्रिया में मैया को क्रोध नहीं था, क्रोध तो नाम मात्र भी नहीं था, बल्कि मन ही मन उनको आनंद आ रहा था, हंसी आ रही थी। और जहाज पर लिखते हैं कि ये मेरे बेटे का करतूत है, उनको आनंद आया, हंसी आई इस बात की कि मेरे बेटे में बुद्धि और बल दोनों विकसित हो रहा है। देखो फोड़ना ही था तो ऊपर नहीं फोड़ा, चलाकी से नीचे फोड़ा कि पता न चले, तो ये बुद्धिमान है। और फिर बाएं हाथ से इतना विशाल मटका जिसमें कम से कम 25-30 लीटर दूध दही रखा गया था, उस मटके को बाएं हाथ से उठाया होगा, तो इसका मतलब बल बढ़ा है और बुद्धि लगाया है, पेंदी में फोड़ा है, तो हमारा बेटा बुद्धिमान और बलवान दोनों हो रहा है, यह खुशी है। लेकिन साथ ही बात्सल्य इतना उमड़ने लगा, जब देखी कि इतना उत्पात कर रहा है, बहुत भारी शैतान हो गया ये, तो दूसरों के घर में तो चोरी करता ही था, सबको तंग करता था, अपने घर में भी ऐसा करने लगा, तो अगर आज इस डेट को नहीं इसको दंडित करूंगी, इसके गलती का फल नहीं दूंगी, तो ये फिर बाद में सुधरने वाला नहीं है, और यदि मैं इसको नहीं सुधारूंगी तो दूसरे स्त्रियों को क्या गरज है, वो तो हंसी उड़ाएगी, उनको क्या गरज, देख देख जसोदा तेरा लाला कितना बदमाश हो गया, तो यही आदत बना रहेगा तो पता नहीं इसी तरह बिगड़े हुए आदत में इसका संस्कार बिगड़ते बिगड़ते आए तो मटका फोड़ रहा है, चोरी कर रहा है, और कल कहीं दूसरे के घर में डकैती करने लगे, किसी दूसरे के स्त्रियों का अपहरण करने लगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं माँ को बहुत भय भय हो रहा था स्नेह के कारण कि बाद में बहुत बिगड़ जाएगा, तो अपने बेटे को सुधारना मेरा काम है क्योंकि मैं इसकी जननी हूं, अगर मैं नहीं सुधारूं तो दूसरा को क्या गरज पड़ा है, तो यह सोचकर मैया के मन में अत्यंत अति महाबात्सल्य उत्पन्न हुआ, क्रोध नहीं, और इस बात्सल्य में छड़ी को लेकर गई कि वो इसको देखकर डरेगा सुधरेगा, दो चार छड़ी भी लगाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं बिना क्रोध के सुधारने के लिए। तो जब घर में जाती है तो भगवान भी उसी ताक में थे कि मैया भी आ सकती है, उखल पर थे, तो उलु खलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सिचिष्ठितम अंगवम चौर विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चासुतमागमक क्षणैः। तो इस प्रकार इधर उधर देख रहे थे उखल के ऊपर चढ़े हुए कृष्ण, बंदरों को माखन लुटा रहे थे, बड़े चौकन्ना थे, चारों तरफ से देख रहे थे मैया कहीं से आ सकती है, हैवं गनम चौर विशंकिते क्षणम, विशंकित थी, शंका में थे कि कभी भी माँ आ सकती है, तब तक निरीक्ष पश्चात देखते पीछे से माँ आ पहुंची, तो देखते ही भगवान वहां से भागने का प्रयास करते हैं, तो माँ छड़ी लेकर आ पहुंची है, इसको देखकर कृष्ण कूद पड़े वहां से उखल से, और तमात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरा ततो वरुय पशसारभीतवत गोप्यन मधावन नयमाप जोगिनाम क्षमम प्रवेशतुम तपसे ऋतम मनः। माँ को देखते ही उखल से कूद पड़े और कूद करके भागने लगे, देख लिए कि हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, तमात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरम, हाथ में छड़ी लेकर आ रही है तो अब तो मिलते ही पीटेगी, ततो वरुय पशसारभीतवत, भगवान को भय वय नहीं है, पीटेगी, ऐसा नहीं है। भीतवत दिखाए कि हम भयभीत हैं, भयभीत जैसे। और गोप्यन वधावन, गोपी जसोदा भगवान के पीछे दौड़ने लगी, दौड़ने लगी। अमाप जोगिनाम क्षमम प्रवेश तुम तपसेदितम मना। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मैया श्री भगवान के पीछे दौड़ रही है, जिनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े जोगी लोग तपस्या से अपना चित पवित्र करके भी उनको नहीं पकड़ पाते हैं। सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष तप करते हैं, अत्यंत तपस्या के द्वारा मन को अत्यंत पवित्र करने का प्रयास करते हैं, किसी भी संसारिक विषयों की ओर नहीं ले जाते, एकाग्र होकर अष्टयाम जोग करते हैं, इसके बाद भी प्रवेश नहीं करा पाते हैं। कभी कभी भगवान के रूप उनके मन में आता है और कभी कभी नहीं। ऐसे प्रभु को हाथ में छड़ी लेकर पीटने के लिए दौड़ रही है, यह अद्भुत लीला है। तो इस प्रकार पुत्र का भय प्रदर्शन माता छड़ी लेकर आई है। कृष्ण जब ही माता को देखे त्यों भागने लगे, भीतवत भयभीत जैसा। स्वाभाविक मातृ स्नेहातिशय ज्ञान के कारण तत्वतः भीतर से भयभीत नहीं थे। जानते थे कि मेरी माँ है, मैं कुछ भी कर दू, मम्मी कह दूंगा बस खत्म, अब कितना रो दूंगा, ज्यादा करेगी तो उसके मारने से पहले रो दूंगा, छड़ी तो फेंकना ही है, वो थोड़े पीटेगी। भीतर से भगवान जानते थे, स्वाभाविक मातृ स्नेहाधिक को पहचानते थे कि ये मारेगी नहीं, फिर भी माता को दिखाना है कि हम भयभीत हैं, इसलिए भाग रहे हैं। कुंती महारानी कह रही है कि उस दृश्य को जो देखा है वो कभी नहीं मान सकता कि आप बनावटी कर रहे थे। चक्रवर्ती ठाकुर वहां भी संकेत करते हैं कि माँ कुंती के इस वाक्य से ऐसा लगता है कि वह नंद भवन में उपस्थित होकर वह दृश्य देखी है। कुंती महारानी अपने स्तुति में कहती है, गोप्या ददे त्वई कृता गसिदाम तावद जाते दशा सुकलिलान जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपियत विभेति। सामाम कहती है सा, वह दृश्य आज तक मुझको मोहित कर रहा है। तो सा कहकर मानो महारानी कुंती स्पष्ट कह रही है कि जिसको मैंने अपने आंखों से देखी हूं, वह दिन जिस समय गोपी जसोदा के भय से आप भाग रहे थे, कृता गसिदाम तावद आप उनके प्रति अपराध कर लिए थे, और जब हाथ में रस्सी उठाई और छड़ी उठा ली, मारने के लिए छड़ी उठाई, तो याते दशा सुकलिलान जन संभ्रमाक्षम आपके आंखों से अजस्र आंसू प्रवाहित हो रहा था, जो आपके आंख के काजल को धोकर गालों पर बह रहा था, और जब मैया पकड़ ली तो भयभीत होकर बार बार देख रहे थे माँ के तरफ, भयभीत नेत्रों से नेत्र कांप रहा था डर के मारे, भयभीत होकर छड़ी के तरफ देख रहे थे, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य बार बार अपने तिरछी चितवन से मैया के छड़ी की ओर देख रहे थे, सामान विमोहयति वह दृश्य वह सीन आज तक मुझको मोह में डाल रहा है। कौन भयभीत हो रहा था ऐसे? भीरपि जद विभेति, जिससे भय भी भयभीत होता है, काल भी जिनके सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करता है, वही महाकाल श्री कृष्ण आप जसोदा के छड़ी से कांप रहे थे। वो कोई बनावटी नहीं था, मैंने आंखों से देखा है, सामा कहकर वह दृश्य मुझको आज तक मुंह में डाल रहा है। भीरपि जद विभेति, तो जो भी हो भीतवत प्रदर्शन ऐसा किए कि हो सकता है कि उस प्रदर्शन में ही कुंती महारानी सचमुच मान रही है। और वास्तव में भगवान माँ जब पकड़ी तो ऐसे घिघिया कर रोने लगे, रुदंतम मुहुर्मित जुगमम निर्जंतम, जब ही पीछे से कंधे को पकड़ी ते रोने लगे और रोते हुए दोनों हाथ से दोनों आंखों को मलते हैं। रुदंतम मुहुर्मित जुगमम निर्जंतम कराम भोज जुगमे में सातंक नेत्रम, मल भी रहे और देख भी रहे, आतंकित नेत्र है, नेत्र चंचल है, छड़ी के तरफ देख रहा है, सातंक नेत्रम और मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित गई व दामोदरम भक्ति बद्धम, आतंकित होकर लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, बहुत तेज रो रहे हैं और उनके गले में तीन रेखाएं दिखाई दे रहा है। और यह सब क्यों हो रहा है? भक्ति बद्धम, भक्ति के अधीन होकर, मैया के अधीन होकर भगवान की अद्भुत लीला है। तो इस तरह से कांप रहे हैं, इतना तेज रोने लगे, पकड़ में जब आए तो इतना तेज चिल्लाने लगे कि अब माँ को छड़ी फेंकना पड़ा। बेटा मारूंगी नहीं, रो मत रो मत। दूसरा समस्या खड़ा हो गया, अब क्या मारेंगी। कोई बच्चा गलती किया हो और उसको आप तेज पुकार दीजिए, रुको रुको, और दौड़ जाइए और बिना मारे रोने लगे, तो फिर अब एक नया समस्या हो जाता है चुपवाना। और जब डर कर बच्चे रोते हैं तो बहुत देर तक रोते हैं, भयभीत होकर जब रोते हैं तो चुप होने के बाद आंख के आंसू बंद होने के बाद भी माँ के गोद में पड़े रहते हैं, लेकिन देर तक रोने के कारण लंबी सांस लेते। माँ तो चिंता में पड़ जाती, कुछ हो गया क्या। जब देर तक बच्चे रोने लगते हैं तो माँ की एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि इसको कुछ दूसरा रोग हो गया, अब तक सिसक रहा है। तो किसी वैद्य से डॉक्टर के पास जाती है, क्या हो गया, बड़ा देर तक रोया है, मैं काम धंधा में ध्यान नहीं दी और बहुत देर तक रो रहा है, अब तक सिसक रहा है। तो भयभीत हो गए, तो भयभीत होकर एकदम भीतवत भागने लगे। समय तो हो गया और श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यही छोड़ता हूँ। हरे कृष्ण।